सवाल था कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी है, तो किसी ने कहा 206 205, एक ने कहा 401.
I know where this is going.
एक आंसर ने तो ना मुझे हिला के रख दिया, कहते हैं जी सर ये अल्लाह के मामले हैं, आपको कुछ भी नहीं, हम इंसानों को कुछ नहीं पता.
अच्छा
ओके 206 साइंटिफिक है. कहते नहीं जी आपको क्या पता, साइंटिफिक को क्या पता, इंसान ने गलती होती रहती है, अल्लाह के निजाम है, आप बस छोड़ दें इस्लाम.
Wow.
तो उसको होस्ट ने कहा तभी, कहते हैं मेरी जान तभी तुमने कपड़ों की दुकान पे काम करते और चला गया वहां से.
Hey, my name is Habib Ahmed, and you're listening to Popcorn. Each episode, I interview different guests from all over the world, and we all have one connection to Pakistan. Today's guest is a history buff, Sathir Ahmed.
So, my name is Sathir. But pura naam bata hu, Chaudhry Ahmed Abdul Sathir Kumman. This is my dad has said me to like proudly bataya karo sabko, you have to have your own identity. My name is Ahmed Abdul Sathir. My dad is very sad that my family didn't continue the whole process of, you know, he said I don't have the mentality ki, oh my god we are Chaudhrys, but you should have your own family identity. So
Sathir currently lives in Canada, but by that I don't mean Toronto or Calgary or Vancouver, a lesser known place in Canada.
Then I'm 22 years old. I live in Newfoundland, Canada. यहाँ पे एक ही main शहर है St. John's. And यहाँ पे मैं Bachelor of Computer Science का student हूँ. It's been मैं एक साल हो चुका है मुझे यहाँ पे, and I'm finding it very peaceful to be honest.
Newfoundland is an island off the east coast of the North American mainland, northeast of where I live in Boston. And while Boston is a relatively small city in the US, it has a greater population than all of Newfoundland. The capital of Newfoundland is a city called St. John's. Newfoundland had global coverage earlier in 2020 when a historic blizzard pounded the island, dumping 30 plus inches of snow in less than 24 hours. People were stuck inside their homes. The city of St. John's was put in a state of emergency with businesses closed for over a week. Around that time is when Sathir actually messaged me on Instagram. He even shared pictures of his situation during the blizzard, with snow covering his front door all the way to the top. We'll even share those pictures in the description of this episode. 8 months later, Sathir is now on the podcast. He's going to be talking about not just life in Newfoundland, where he goes to school, but also extensively about his life spent in Qatar and the Middle East.
The thing is, St. John's is not a city, you can call it a big town. So even if you wake up at 6 a.m. in the morning, the first thing you're gonna hear is maybe the sounds of birds chirping. Like everything is natural. I remember the first morning I woke up 6 a.m. and it was so quiet that mujhe laga ki shayad na duniya khatam ho chuki hai mere, main sota raha hu itni der ke andar. The harbor is like 3 kilometers away from my house and it's a pretty long hill. Aap dekh nahi sakte, and voices coming from there is a very very लो चांस से आने का. तो वहां से भी जब शिप्स का जो कोई हॉर्न वगैरह होता है वो बजता है, तो इवन लाइक सुबह सुबह कभी आँख भी खुल जाती है उससे. तो वो बड़े मजे का सिनेरियो होता है यहाँ पे. बाकी फ्रॉम पाकिस्तान आई बिलोंग टू सियालकोट. आई हैवंट बीन टू सियालकोट, आई बिलोंग देयर, इतना मुझे पता है. तो मेरी फैमिली इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु केम टू इस्लामाबाद इन 1965, जब इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कैपिटल, अ वेरी प्लान्ड कैपिटल. माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड वेरी सीनियर पोस्ट इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यू कैन से. We were in Pakistan till I was 15-16ish. Then my dad had a chance. He used to work in PTV rights as an engineer, so he got a chance to work in Qatar as a same job but in a different channel. So we just shifted to Qatar after that. So after spending like 3 to 4 years in Qatar, I just came here to St. John's, Canada, and just pursuing my degree.
Say. Did you have a choice in coming to Newfoundland, or was this the best school that you could find at the time?
To be honest, back in Pakistan, I used to main bahut sare consultants ke paas gaya. So it turns out that Canadian universities do not give you as much commission to a consultant rather than Australian universities. So Pakistan mein kahin consultant ke paas jo to wo tha na, Canadian prospectus band karke side rakhta hai ki ye to ho nahi sakta, you should go to Australia. So I was almost going to Australia. I even had a cousin over there in the same university.
Yeah.
But at the last moment, dad was like, no, Canada, east of west, Canada is the best. And, you know, Trudeau sabke dil pe raj karta, including my dad's.
Right.
So I guess that's the reason I came here.
And Canada is just so big. Because yahan pe hamari assumption hoti hai ki when people say Canada, main Canada mein rehta hun, we automatically think about Toronto mein rehte hain.
Toronto mein rehta.
In reality, Canada is just so big. अब न्यूफाउंडलैंड से आपने रोड ट्रिप करना हो कोई टू एनी नियर बाय सिटी, आई थिंक द क्लोजेस्ट वन माइट बी मॉन्ट्रियल, द बिगेस्ट वन.
Yeah, Montreal, the biggest one is Montreal, exactly.
Yeah, and even that's probably quite a ride for you, right?
Newfoundland is a big-ass island. Matlab, main kahun to usko main nation declare kar sakta hun, to be honest. And to be honest, Bangladeshi itne yahan pe main isko Bengali colony declare kar sakta hun.
Really?
Yeah, bahut. I have friends that jo mera sabse oldest Pakistani friend hai na Newfoundland ke andar, he came back in 2012. Wo kehta hai ki us waqt there wasn't even a single desi here. He says like, jisna tum aaj dekh rahe hain, sare baithe hain, kehta hai inme se ek banda bhi nahi tha yahan pe. So, 2016-2017, the influx of more students started from Pakistan. Most of the Pakistanis here, we are not from Pakistan, like the especially undergrads, man. We are from the Khaleej areas, the Gulf ke hain. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Bahrain ke kaafi hain. So, most of us, undergrad ki degrees ke liye hain, hum saare Gulf countries. Pakistanis hain, but we live in the Gulf actually. Masters ke students hain, they are most of them are from Pakistan because they usually get visas easier over there for masters. Because masters are of two types. Ek hota hai funding based, ke they give you grants to study, and then there is one course based, okay, aap paise dete ho padhne ke liye. So if you get a funding, the immigration ko bhi satisfaction hoti hai, banda slip nahi hoga, he already has the money, so just grant him a visa. So unko visa aaram se mil jate hai, that's why most of the people in masters are from here from Pakistan. Baki Bengalis bahut zyada hain, then second number pe Indians hain, then a lot of people from the black nations, you can say, the lower South African side, Ghana, Zimbabwe, then I guess Pakistanis, we are a very, hum minority consider karte hain apne aap ko, we are not very much in the university. Hamare humse pehle Indian, Bengalis, Indians, then phir jo Latin America hai wahan se kafi log hain, matlab it is a very very diverse area.
अच्छा,
मेनलैंड कनाडा से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, because it's very this is the cheapest university in Canada to be honest. I got into University of Toronto. It costed me like $45,000 a semester. $45,000 a year. So, and dad was like, do you want to do it? Should we take the risk? I said, dad, for this, aapko mujhe mama aur choti behan sabko na kidneyan bechni padni hai ek semester ki fees ke liye.
Yeah.
So, let's go with the safest option. You know, we can invest more when my master's karunga. So, aur mazze ki baat hai, mere pe, usse maine galti se keh di, yaar, padhne kiska dil chahta hai, master's se dekhunga ki karunga ki nahi karunga. Aisi laan taan hui hai na, mere pe almost disown karte karte reh gaye the wo mujhe.
So, they definitely want you to do it.
I have to do it. I have no choice actually. That's the problem. Mazze ki baat hai ki mera ye semester was supposed to be in the US. Mera summer semester, mujhe George Mason University mein mil gaya tha, transfer. और मुझे वहाँ एक लड़की ही पसंद थी, मैंने कहा बेहतरीन काम हो गया ये तो. एक सेमेस्टर में दो चीजें खड़काई जाएंगी. खड़काने से मेरा मुराद है, मैं सीरियस गाय, मैं बुरा बंदा नहीं हूँ, आई मेंट एज एन प्रॉपर रिलेशनशिप हो जाएगा मेरा. तो लेकिन पहले उन्होंने कोविड की वजह से मुझे मना कर दिया कि आपका, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. फिर वो BLM के प्रोटेस्ट शुरू हुए और मैं जॉर्ज मेसन के आसपास हालात देखे, मैंने कहा शुक्र है मैं नहीं गया, भाई बचत होगी वहाँ पे.
वैसे न्यूफाउंडलैंड इन जनरल मैंने इतना सुना नहीं, तो अमेरिका में गेस्ट भी हमारे ऐसे ही होंगे, उन्होंने इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सीखा. सो इन जनरल आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई हर्ड मोर अबाउट न्यूफाउंडलैंड वाज व्हेन दिस होल ब्लिजर्ड सिचुएशन हैपेंड इन द विंटर. सो दैट्स व्हेन आई फर्स्ट केम द स्पॉटलाइट. आई वाज लाइक, एंड देन शॉर्टली आफ्टर दैट आई फाउंड आउट अबाउट द ब्लिजर्ड. मैंने नाम गौर किया न्यूफाउंडलैंड, अच्छा ये भी जगह है, अच्छा ठीक है. एंड देन मे बी अ वीक और टू आफ्टर दैट आई रैन इनटू यू.
Because I remember, right, when I joined Discord, join kiya tha Pakord ka, then back then I was in Qatar. Yeah, main Qatar mein tha. When I came to, first time I came to Canada, I was like St. John's, man. And to me, this was Canada. I was very happy here. Main kaha, matlab aisa hi hai. Logo ne kaha, aur tumne Toronto nahi dekha, ye nahi dekha, to tumhe kuch pata hi nahi. Main kaha, nahin, mere liye sahi hai. Then I went to Qatar and वापसी पे ना मैं 500 टोरंटो घुमाया गलती से. और यार मैं कहते हैं ना, जगह से प्यार हो गया मुझे. इस लोग कहते हैं कि इसका देसीनेस वहां पे नहीं, इट्स लाइक मुझे आर्किटेक्चर बहुत मजे का लगता है. इट्स अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू, जैसे मुझे बड़ा एस्थेटिक लगता है. इट्स एक वो उसमें एक उस जिंदगी में वो एक हसल है जो कि मुझे अच्छी लगती है थोड़ी बहुत एक सर्टन एरिया ऑफ द सिटी में. आहिस्ता आहिस्ता ना आपको यहाँ के सुकून की आदत लगती है कि आप सुबह उठते हो, द फर्स्ट थिंग दैट ग्रीट्स यू इन द मॉर्निंग इज अ ब्रीज. एक्चुअली इट्स नॉट कि हॉर्न की आवाज आएगी, टेंडी पा पा पा, बसों का शोर नहीं है. आप शाम को 5 बजे निकलो, 6 बजे निकलो, एवरीथिंग इज एट पीस. आपको मुझे आई हैव अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ एक्ने एंड कतार में आउटब्रेक्स यू आउटब्रेक्स बिकॉज वाई, वो गर्मी है, पसीना है, पोल्यूशन इतनी है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द पेट्रोल एंड एवरीथिंग. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ईयर एंड आई हैवन्ट हैड अ लाइक एन आउटब्रेक. यहाँ इटसेल्फ इज क्लीन. थिंग ऑन न्यूफाउंडलैंड इज के एक मेजर सिटी है सेंट जॉन्स, उसके बाद एक माउंट पर्ल, मतलब वो माउंट पर्ल एंड सेंट जॉन्स लाइक पेंडिंग इन इस्लामाबाद, 7 सिटीज है. बाकी सिटीज वगैरह हैं, छोटी मोटी फिशिंग कम्युनिटीज हैं कुछ. आई गेस दैट्स द रीजन कि पॉपुलेशन इतनी नहीं है तो चीजें इतनी साफ नहीं है. प्लस दे आर कैनेडियंस तो ये ख्याल भी रखते हैं यहाँ की चीज़ों का.
सही. तो वहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती होगी राइट?
सर्दी बहुत पड़ती है. सर्दियाँ सितंबर में, अगस्त सितंबर में ठंड होना शुरू होती है रात को. उसके बाद आई थिंक सो द फर्स्ट लाइक एक्चुअल समर वी हैड वाज मिड मई और मिड जून. तो उसके दरमियान तो स्नो, पिछले साल तो स्नो में वी हैड वी आई मीन क्लासिफाइड इट नॉट एज a snowstorm, it was called Snowmageddon.
Yeah, because seriously, people were locked in their houses, they were stuck in their houses because the snow was up to their second floors. It was crazy.
Exactly. There was a guy who even wrote a book, like 2 weeks ago, usne book bhi rakh li ke how Newfoundland and it just like helped each other. Aur waqai matlab na, I remember ek din main ghar mein baitha hua tha, I just had a random knock on the door. So like, and it was ye nahi tha ki army wale aur police aur ambulance, it was just a normal like kehte na, a friendly neighborhood couple. They were wearing snowshoes and they were going to every house saying ke bhai hamare paas we have long lasting food, like canned food hai and granola bars hai. Mm-hmm. So if you guys need anything just le lo humse. Mm-hmm. The other day I was passing the street, like post box se passing box pada hua, usme thode se sanitary ke equipment or like just tools hai, thoda sa khana, thode se bachchon ka stuff and likha hua ke jo bhi jitna zarurat hai jo bhi zarurat hai please take from here. So these are some things ke aap kabhi mujhe kabhi expect nahi karta tha ki main white community mein dekhunga itna, because you can say it programming bhi hai movies wala mein dekh dekh ke yahan pe log utne sensitive nahi hote, aap rote rahoge koi puchega nahi aapko. That is a very very untrue fact. Ye main define kar sakta hu, log people do care, they don't care that much but when they care aapko kaafi they do care about a lot of people. तो मैं तो मामा से कहता हूँ ना पूछती मौसम कैसा है, मैं कहता हूँ मस्त माहौल थे मिठे चोल, तो मतलब आज तो बहुत अच्छा मौसम है. फिर आज कैसा मौसम आज तो सावल वाला मौसम है, आज कैसा मौसम है आज तो पकौड़ों वाला मौसम है. तो समर यहाँ पे अच्छी होती है, ऐसी अच्छी ऐसी गुजरती है. विंटर में आज कौन सा मौसम है क्या मेरा दिल चाह रहा है सुसाइड कर लूं भाई, कितनी इधर देखो बर्फ है, इधर देखो बर्फ है. मजे की बात है कि मेरे घर से ना दो रस्ते में यूनिवर्सिटी के लिए, एक तरह लंबा एक तरह छोटा है. तो छोटा वाला जैसे बैक यार्ड, उस बैक यार्ड के साथ ही बेसबॉल ग्राउंड है. सर्दियों में मुझे याद है स्नोमेगेडन हो चुका था और ना मैं देखा यार, मैं कहा यार इतनी बर्फ नहीं लग रही, तो मैंने पहला पांव रखा सख्त हुआ बर्फ बिल्कुल बेहतरीन हो गया. जब हाफ वे थ्रू द एक पांव रखा यार मैं अपने पेट तक अंदर चला गया बर्फ के अंदर.
Really? Oh, oh.
And I was like,
it could have been worse.
I was like, अब मैं करूं क्या? Because literally your hands are stuck, your legs are stuck. आपको समझ नहीं आती करें क्या? Then I called a friend of mine. उसने अपना ट्रक लाया और रस्सी फेंकी and when I grabbed onto it, तो उसने मुझे खींच के निकाला. So that was a very कहते ना नया एक्सपीरियंस, नया और अजीब गरीब एक्सपीरियंस है जगह का.
Yeah, it could have been even worse. You could have gone all the way down.
Exactly.
Yeah. Wow.
The thing about Newfoundland is कि it's not a, you can say the Atlantic region of Canada ना, it's not a very rich region. यहाँ के लोगों का मसला ये कि the government tries people to stay but not a lot of opportunities, because कितने लोग रुक सकते हैं यहाँ पे.
हाँ, इकोनॉमी कैसी है? जॉब्स वगैरह मेरे ख्याल में कम ही होंगी वहाँ पे.
जॉब्स जरा कम है. दे हैड अ वेरी बूस्टिंग इकोनॉमी 2015 आई गेस. इनकी ऑयल मार्केट जा रही थी, देन इफ यू रिमेम्बर एक बहुत बड़ा ऑयल मार्केट क्रैश आया था, उसमें मुझे याद है कतर को भी बहुत नुकसान हुआ था. तो उसके अंदर ना इनका भी नुकसान है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए थे पता नहीं कितने मिलियन के हिसाब से, वो सारे कैंसिल करने पड़ गए बिकॉज ऑयल की रेवेन्यू इतनी नहीं रही थी. तो उसमें काफी इनकी इकोनॉमी गिरी थी, बट देन दे गॉट बैकअप अगेन. सारी स्नोमेगेडन आ गया, इट वॉज वन वीक ऑफ नो बिजनेस, बट देन अगेन इतनी छोटी जगह के लिए वन वीक ऑफ नो बिजनेस इज स्टिल अ वेरी बिग थिंग. देन अभी स्नोमेगेडन से मुश्किल से रिकवर हुए थे, देन द कोविड स्टार्टेड और वो रहा 3-4 महीने.
एंड हाउ बैड वाज कोविड ओवर देयर बाय द वे?
कोविड हियर वाज ओकेश. आई थिंक द मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वी हैड इज 264. इसमें से रिसेंटली चार एक्टिव केसेस हैं, वो भी दे केम आउट ऑफ द प्रोविंस एंड दे आर ऑल्सो नॉर्मल एज वेल. So COVID didn't hit us that bad, but the economy COVID actually hit kiya tha. But then again, I would call him Sugar Daddy Trudeau. So he gave $2,000. It's called SURF money.
Right.
So for 2-3 months, you got $2,000.
Right. Nice.
So raj ke usko hamare logon ne exploit kiya, jinko nahi zarurat thi unhone bhi liya hai. लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं. मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा ट्रूडो इज जस्ट लाइक यू नो वो पाकिस्तानी शादियों पे वो नाश्ते वालों पे फेंक रहे थे पैसे ना, लाइक मनी 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 मनी.
या ऑफ कोर्स या नोबडी वुड रिजेक्ट दैट टू बी ऑनेस्ट.
एग्जैक्टली.
हमें भी यहां पे मिले हैं ट्रंप की तरफ से, लेकिन not, not that generous.
thing is, आप लोगों के लोग इतने ज़्यादा हैं.
Yeah, यहाँ पे structure काफी different है. So, but it's all right. I mean, you can't. I mean, a lot of people have lost their jobs, so you know, I can't complain on their behalf. To be honest, हम तो अल्लाह का शुक्र है. मेरी job तो काफी secure रही है throughout the pandemic so far.
नहीं, actually, the thing is even worse in the Middle East, because मेरे dad के office में, I remember. He's in Al Jazeera, right? So, and he works in a proxy channel that's called Bein Sports. That shows like European football leagues and everything. So, mere baba ke office mein, I think so, there were a lot of Pakistanis, and now there's only like just a handful of them. Like, ek din mein farak kiya. Mere baba ke bhai nahi hai, so all of his friends are his best friends. So, main unko sabko chachu bolta hoon. Yaar, 3-4 chachu ek saath Qatar se nikal gaye. Aur sirf mere baba ke office mein nahi, Qatar Petroleum, Qatar Gas, Qatar Electric. हर जगह जो है ना मसला यह है कि उन्होंने बस एक ईमेल भेजी है कि यू आर फायर्ड, बट कहते कहीं पे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि आप फायरिंग है या वी आर लेटिंग यू गो. बस कहते हैं यार इतना लंबी चौड़ी ना दो पेज के पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि आप फायरिंग है, लेकिन कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया क्यों और कैसे. तो देन दे गिव देम लाइक 2 महीने की सेवरेंस पैकेज एंड 2 months टू लीव कतार. एंड द प्रॉब्लम अब मेन पता कितने लोगों के लिए आता है. इस तरह मेरे जाने वाले अंकल हैं, he has taken, उनके ऊपर लोन है अबाउट 150,000 रियाल, दैट्स पाकिस्तानी 70-80 lakh रुपीज आई थिंक. ऐसे इतना करीब करीब होगा इतना इसके. तो अब उन लोगों के लिए मसला है कि 2 महीने में हाउ दे कैन दे रिकवर, और कुछ लोगों के इससे भी ज्यादा लोन है. तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस उन लोगों के लिए. एंड आई रियली डोंट नो कि कतर क्या प्लान है उसको डील करने के लिए. बिकॉज मसला ये है कि वन, दे वॉन्ट लेट देम आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द लोन. And second thing is, if they don't, agar suppose wo Pakistan mein phase hain, they cannot go back to Qatar, or ya wo kisi tarah bhag aate hain Qatar se, then they will be blacklisted, and not just in Qatar, pure GCC mein. That means Saudi, Dubai, Qatar, UAE, Oman, Bahrain.
That's it. You basically can't go anywhere in the Middle East.
Exactly. Phir aap soch lo, aap umrah karne ke liye nahi ja sakte dobara. Saudi bhi nahi ja sakoge. So, isliye most of the people like who are trying to leave Qatar right now, especially Pakistanis and everything, they want ki yaar hamara sara score settle ho ke yahan se jaye taki hum aaram se
darwaza khula
at least exactly darwaza khula wapas agar alag karta hai to wapas to aa sake. So the most secure job right now jo Pakistanis kar rahe hain wahan pe is in the army and in the police, because Qatar ki 90% police is Pakistani and 90% army is Pakistani. Basically, story is that in the 1970s when Qatar used to have wars with Bahrain and everything, so inke apne log to ladne wale hain nahi, so unhone kaha yaar chalo, wo kehte hain soldiers of fortune hire bhi bula lo. So they used to call Pakistani army zindabad, zindabad hamari, jahan bhi dollar phenko hum taiyar hai kaam karne ko. So inhone bula liye, jung hui, to us waqt Qatar ki army mein there were Filipinos, Indians and Pakistani. तो हुआ ये कि जब जंग हुई देन तो बहरीन इज एन आइलैंड दैट्स गल्फ की बिल्कुल मिडिल में, इट हैज नो लैंड कनेक्शंस, जस्ट देयर इज ओनली वन लैंड कनेक्शन दैट्स सऊदी एंड दैट्स अ 26 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज. वो भी रिसेंटली बना 20 द वॉर वाज इन 1970s एंड 80s. तो पठान जो हमारे यहाँ गया भी कौन यहाँ से पाकिस्तान से बलोची और पठान से सारे उन लोगों ने जहाँ फिलिपिनोज और कतरी भाग गए, फिलिपिनो कतरीज और इंडियन भाग गए, वहां पठान बहरीन जाके बंदे मार के आए थे. मतलब अच्छा खासा एक वो सेलिंग डिस्टेंस है, वहां जाके उनकी बीचेस पे लैंड करके वहां बंदे मारे उन्होंने. तो वो जो पठान थे ना जो उधर गए थे, उनको तो उन्होंने कहा भाई इनको तो दो नेशनैलिटी और दो स्टार्स का रैंक, मतलब दे आर ऑफिसर्स भी कायदा. नहीं तो कतर और पुलिस और आर्मी में एज अ नॉन रेजिडेंट कतारी आप एक एनसीओ के ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, यानी सार्जेंट, मेजर सार्जेंट इतना कह सकते हो आप, मेजर कैप्टन ये नहीं बन सकते आप. तो उनको, लेकिन वो एक एक्सेप्शन थी कि उन्होंने कहा भाई इनको तो तुम लोग जनरल क्या जो कुछ बनाने बनाओ, इनको नेशनैलिटीज दो, इनको इधर रखो, लॉयल लोग हैं, और बल्कि इसकी इनकी जो ये पठान है ना, बल्कि पठानों को यहाँ से हायर करना शुरू कर दो आर्मी के लिए के लॉयल को
मैं. अच्छा, मैं कभी मिडिल ईस्ट में रहा नहीं तो मुझे अब इतना पता नहीं, यू नो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज एज मच. अभी कल मैं एक और बंदे के साथ रिकॉर्ड कर रहा था और वो सऊदी अरब में रह के आया है, तो वो क्या बात कर रहा था थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यू नो लाइक पाकिस्तानी.
नहीं, अगर आप रैंक करना शुरू करूँ ना, तो नंबर वन पे अगर रेसिस्ट, तो अरबियों के अंदर ना ट्राइबलिज्म, रेसिज्म बहुत सेंचुरी से है, और इस चीज को निकालना बहुत मुश्किल है. क्यों?
मतलब हर मुल्क में है ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क में है, दूसरे में नहीं है. इट्स बेसिकली
सऊदीया, मैं रेट करना शुरू करूँ ना, तो फर्स्ट वन पे कुवैती आर द मोस्ट रेसिस्ट.
कुवैती
लोग, मतलब मुझे याद है कि रिसेंटली पाकिस्तान में था, मैं आई यूज्ड टू सर्च अ लॉट ऑन डार्क नेट, तो उसके अंदर वीडियोज आती थी कि मतलब लिटरली अपने जो उनके खुद दाम कहते हैं द पीपल हु, मतलब दूसरा दे माइट बी एक्सपेक्ट्रेट्स, नॉर्मली दे आर नॉट कुवैतीज पीपल, फिलिपिनोज हो गए, इंटरनेशनल मलेशियंस, ये मेड बन के आते हैं थ्रू एजेंसीज, बेचारों का बहुत बड़ा होता है, उनको मार रहे हैं. एक तो सीन मुझे याद है कि वो औरत मेड थी, वो खिड़की से गिर रही है, शी इज होल्डिंग ऑन टू अ लैच एंड द ओनर शी इज मेकिंग फन ऑफ हर एंड मेकिंग अ वीडियो. वो औरत गिर के मर गई एंड शी मेड अ वीडियो एंड शी वाज जस्ट लाफिंग. फिर रिसेंटली दे हैड अ लॉ, तो बेसिकली द लॉ इन पूरे खलीज में है कि व्हेन यू कम टू कतर, सपोज मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा गए हैं, सो हिज स्पॉन्सर इज हिज कंपनी, इट्स वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन भी ली हुई है, इट्स ऑल्सो पेइंग द गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ कि जी ये बंदा मेरा है, इसको मैंने रखा हुआ है एंड आई एम पेइंग फॉर इट. लेकिन अगर मैं किसी के पास, सपोज मैंने एक शेयर के साथ बिजनेस भी करना है, तो वो आपका यूजली पासपोर्ट रख लेते हैं आपका, कि आप उनके कफील, एक केयर टेकर, तो वो आप उनकी इजाजत के बगैर आप कतर छोड़ भी नहीं सकते या मिडल ईस्ट छोड़ भी नहीं सकते. तो कुवैत में ये लॉ पास हुआ कि आपको अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर कफीलों से. तो आउटरेज हो गया. एक बकायदा जो उनकी ब्यूटी ब्लॉगर थी, उसने कह रहे हैं कि कहती कि भाई अगर मेरी मेड मेरी इजाजत के बाहर मुल्क छोड़ जा सकती है, तो इसमें सिक्योरिटी का है कि ये तो खुदाम है, पैसे देते हैं गुलाम कौम है, ये स्लेव्स हैं हमारे. बकायदा उसने ऑनलाइन जाके बोला, कुवैत के अंदर से सपोर्ट आई है उसमें. तो कुवैतीज आर द मोस्ट रेसिस्ट. सेकेंड नंबर पे सऊदी अरब है, और अगेन ट्राइबलिज्म, फ्यूडलिज्म बहुत है वहाँ पे. जितने भी वेस्टर्नाइज हो जाएं, लेकिन इनका जो अपना फैमिली सेटअप होता है ना विद इन द फैमिली, दैट्स स्टिल बेस्ड ऑन दोस ट्राइबल सिस्टम्स. कतर के अंदर बताते नहीं है, बट डस्ट ऑनर किलिंग्स भी होती हैं. रिसेंटली मेरी दोस्त ने बताया मुझे, कहती कि एक लड़का अल्जेरियन था, उसको एक कतरी लड़की पसंद आ गई, कतरी लड़के को भी वो लड़का पसंद आ गया. अब एक कतरी लड़का था, उसको कहा, उसने कहा भाई ये क्या बात है, कतरी लड़की मुझे पसंद नहीं कर रही, तो अल्जेरियन लड़की को पसंद कर रही है, उसने अल्जेरियन लड़की की पूरी फैमिली को डिपोर्ट करवा दिया.
अच्छा, तो ये भी है.
ये भी है. यूएई में भी सेम. कतर के अंदर दो और सीन बताता हूँ आपको कि द कंपनी नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, द नेशनल की चीजें हम यूज करते हैं फैंस वगैरह, इसको एस्टैब्लिश किया था पाकिस्तानी ने, इस नेम वाज सेठ सिद्दीक, कराची के थे वो, और उनको भी एंड में बड़ा बदनाम करके निकाला. देन देयर वाज अनदर गाय, आई थिंक ही वाज कराची एज़ वेल. तो जिस तरह ब्रांड्स होते हैं, मतलब एक फैमिली नेम होता है, जिस तरह टाटाज एंड एवरीथिंग, तो कतर में था अल मुफ्ताज के नाम से ना, तो उस बंदे ने पूरा एस्टैब्लिश किया उस चेन को. तो जो द करंट शेयर था उसका बिजनेस पार्टनर था, ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बेहतरीन काम होता रहा. बट द मोमेंट वो शेख मरा, उसके बच्चे आए, उन्होंने कोई रिगार्ड नहीं किया, ऑफिस सर्विसेज हैं, लिटरली ब्लैकलिस्ट सर्विस को वापस घर भेज दिया.
वाओ. तो अच्छा, नंबर 1 कुवैत है, नंबर 2 इज सऊदी अरब,
एंड सऊदी है थर्ड पे द पीपल ऑफ दुबई, फोर्थ पे बहरीनी, फिफ्थ पे कतारीज, एंड सिक्स्थ पे द लीस्ट रेसिस्ट ऑफ ऑल आर द ओमानी पीपल एंड द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन द खलीज. To be honest, उनके एयरपोर्ट पे लैंड करते हो एंड दे आर लाइक यू नो वेलकम मरहबा, आपको अच्छा आपको लगता है कि ओमानी पीपल वांट यू इन देयर कंट्री. यूएई में तो माइंड सेट जो पुरानी जनरेशन है, जो कि आपके बाबा की हो गई या मेरे माँ बाबा की हो गई, उन कतरीज को ना वो एक ट्रेडिशनल घरानों में पले हुए हैं. तो उनमें से कुछ को अंदाजा है कि यू नो अगर ये लोग आए हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में कमाने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी इनको देना. मेरे बाबा के ऑफिस में जब सपोज निकालने लगे थे लोगों को, तो उनके सीईओ कतारी, उसने कहा नहीं मैं किसी को निकालूंगा नहीं, हाँ खुद छोड़ के जाना तो चले जाओ, मैं निकालने किसी को नहीं वाला, क्योंकि कमाने आए हो कमा के खाओ. अब वो माइंडसेट जो है ना, वो जनरेशन में था जो कि आपकी हो गई या मेरे बाबा की हो गई या इस तरह की हो गई. जो करंट जो जनरेशन है ना, उनके तो नजर में उन्होंने ना कभी देखा स्ट्रगल देखी है, ना कुछ और देखा है. वही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, और लिटरली कॉल यू हिंदी मीन्स स्लेव, हिंद मीन्स स्लेव, हिंद मीन्स पाकिस्तानी बंगाली कतरी, और पाकिस्तानी बंगाली इंडियन मीन्स स्लेव.
अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुमने जो की है अभी, कि पिछली जनरेशन जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. आमतौर पे मैंने समझा उलट होता है, यहां पे उलट होता है कि यंगर जनरेशन इज यूजुअली अ लिटिल बिट मोर एक्सेप्टिंग.
एग्जैक्टली राइट. आई मीन लाइक आई रिमेंबर देयर इज अ पठान बाबा जी हु लिव्स नियर माय हाउस एंड ही इज सिंगल. वो कहते हैं पाकिस्तानी की फैमिली है, कहते हैं कि बेटा 40 साल में यहाँ गुजार चुका, तो मैं लगता है मैं वापस जाके फिट हो सकता हूँ. कहते हैं मेरे अपने बच्चे मुझे रखेंगे. कहते हैं और वो एक ऐसी कहते हैं कि ऐसी रियलिटी से मुझे फेस करना पड़ रहा है. कहते हैं मुझे उनसे शिकायत कोई नहीं, उनसे मुझे कहते हैं उनके लिए तो मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अब मैं उन पर बर्डन नहीं बनना चाहता. तो predominantly they are racist, their policies are based on their के फायदा उनके ओन लोगों अपने लोगों को पहुंचे, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी
लेकिन एक्सेप्शंस भी बनाते हैं, मेरे सुनने में जो आया एक्सेप्शंस बनाते हैं लेकिन सिर्फ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज के लिए.
एग्जैक्टली,
मुस्लिम कंट्रीज बेसिकली डार्कर स्किन कंट्रीज, दोज आर द वंस दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट. दैट्स व्हाट आई हर्ड.
ट्रू. लाइक अगर सपोज मेरे बाबा का, मैं अपने बाबा की एग्जांपल से लेता हूं, बिकॉज़ ही इज द पर्सन लाइक मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन आई हैव मेट इन कतर, राइट. तो सपोज ही इज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, वो लड़ भी नहीं सकते. अब उन्हें लड़ना है, उन्हें पुलिस ने रेस्ट करके लेके जाने के, भाई ये तो प्रोटेस्ट किया इसने. अब अगर एक मैं कनेडियन हूँ ना, और मैं पाकिस्तानी कनेडियन हूँ, ब्राउन स्किन है लेकिन पासपोर्ट कनेडियन है, मैंने सिंपल काम करने, अपने एम्बेसी को फोन करना, मैंने एक्सप्लेनेशन सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, और मेरे ख्याल एम्बेसी है भी अबू धाबी में, इट्स नॉट इन कतर. जो भी है वो कोऑर्डिनेट करेगा बाबा के ऑफिस से, फॉरन मिनिस्ट्री, जिससे भी करना है. वो पूरा थ्री, मतलब एक अच्छा बड़ा सा सेवरेंस पैकेज भी देंगे, इज्जत भी देंगे, और ये भी हो सकता है कि जी अच्छा आपने अगर रहना तो रहें, हम आपको निकालेंगे भी नहीं, आपने जब मर्जी जाना है आप यहाँ से चले जाएं. तो आप यार फिलिपिनोज की हमसे ज्यादा एक स्ट्रांग लॉबिंग है इन कतर.
अच्छा,
फिलिपिनोज की ज्यादा स्ट्रांग लॉबिंग है हमसे. मतलब मुझे याद पड़ता है कि देयर वाज दिस केस के कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें फिलिपिनोज खड़े हुए थे, दोस्त इंतजार कर रहे थे. तो एक शेख आया, उस यंग से लड़का था, उसने गाड़ी मार दी, वो जल के मर गए बेचारे सारे. तो फिलिपीन एम्बेसी ने कहा ऐसी की तैसी, जब तक याद हो तुम सारा खून बाद हो, वो ब्लड मनी दो सबका, याद हो जस्टिस दो हमें. तो उन्होंने कहा जी तो लड़का पागल है एंड एवरीथिंग. उन्होंने कहा नहीं, सेम एज अ केस, एक और मर्डर केस था, एक कतरी लड़का था एंड ही वेंट टू एन इंटरनेशनल स्कूल. तो इंटरनेशनल स्कूल में मोस्टली टीचर्स आर वाइट और अरब्स हु आर वाइट, लाइक मोस्ट ऑफ देम हैव अ यूरोपियन और अमेरिकन पासपोर्ट. तो ही वाज हैविंग सम एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप्स विद अ टीचर ओवर देयर, वो इंग्लैंड की थी. वन डे वो उसको लेके गया कि आई एम मैम, हम आपको सफारी पे लेके जाते हैं. वो था और दो तीन लड़के और थे, वो सफारी पे लेके गए. फिर दे वेंट, मतलब खाना खाया. अब कतरियों को लगता है कि जी हर लड़की उनकी पैसे में मरती है, तो एक लड़की को घुमा फिरा लिया, खाना खिला लिया, तो मींस के नाउ शी वोंट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग. तो उसने इट्स एग्जैक्टली, तो अब उसने कुछ एडवांसमेंट्स करने की कोशिश, मतलब काम करने की कोशिश की, तो टीचर ने मना कर दिया. उसका बेचारी का रेप भी हुआ, जबरदस्ती की एंड दे किल्ड हर एंड बर्नड हर ओवर देयर, लाइक जला दिया. फिर सुना है कि अगले दिन कोई बद्दू कहते हैं उनको, द जो कैटल फार्मर्स होते हैं वहां पे, तो वो कोई अपना हर्ड लेके कहीं जा रहा था, तो उसने कहीं देखा कि इस तरह ये जड़ी हुई जगह बोन्स पड़ी हुई है. तो देन ही कॉल्ड द पुलिस, देन आइडेंटिफिकेशन हैपेंड, देन उसकी लड़की की अम्मी आ गई, दोनों गॉट मर्डर्ड. एंड शी वाज लाइक, जब तक इस बंदे को जेल या सजाए मौत नहीं होती, आई एम नॉट लीविंग दिस कंट्री. एंड बिकॉज़ शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड, द गाय वेंट टू जेल. बट ये वही कतरी है, पाकिस्तानी इंडियन होता है, उन्होंने रख के दो चपेटे मार ली, तो बाहर निकाल देना था.
कोई केस वगैरह नहीं बनना था,
कोई केस वगैरह नहीं बनना था. हाँ, मर्डर किया होता फिर वो बड़ा केस बनना था.
आई मीन यहाँ पे यू नो, इन लाइट ऑफ द रीसेंट फॉर एग्जांपल, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन हियर टू. मैं कई बार अपने मैंने ये स्टोरी भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, लोगों को रिमाइंड करने के लिए, हमारे मुसलमान लोग जो हैं, पाकिस्तानी लोग, कि यार ठीक है ये कॉज बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी देखें कि हमारे मुल्कों में कितने मसले हैं, तो इसको प्रायोरिटाइज करना होता है. यहाँ पे मसले हो रहे हैं, चलो ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में, कनाडा में हो जरूर है, लेकिन ऐसे एंगल से देखना कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, यू बेसिकली जस्ट मूव्ड हियर रिसेंटली, और हमारे मुल्कों में कितने मसले हैं, हम जिन मसलों को छोड़ के भाग के यहाँ पे आ गए हैं, आप उनको भी रियलाइज करें पहले, आप अपने मुल्कों में भी चीजें ठीक करने की कोशिश करें. दैट्स माय पर्सपेक्टिव.
आई वाज टॉकिंग विद नाना बू द अदर डे, एंड आई वाज लाइक, नाना बू पता है कि जो चीजें पाकिस्तान में है ना, सपोज इलिटरेसी होगी, पॉवर्टी होगी, डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने कहा वो सारी यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं. हम कहते हैं ना मसाइल, रेसिज्म और पॉवर्टी, प्रोकेस्टिनेशन, लोग गंदे हैं, रिश्वत हो गई, मैंने कहा ये सारी यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो उस लेवल पे इंसानी जिंदगी को मुतासर नहीं करती हैं कि इंसानी जिंदगी डिसरप्ट ही हो जाए बिल्कुल. तो वो इसलिए इतनी हाईलाइट होती नहीं यहाँ पे. डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे होती है, पुलिस आती है, केस होता है, डिवोर्स होती है, मतलब इट्स नॉट इतना, ऑफ कोर्स इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के. नहीं जी तुम लोग बच्चा कर लो सही हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा, इस बाबे के पास जाओ ठीक हो जाएगा, फिर 6-7 साल तो डिवोर्स में लग जाते हैं सिर्फ. तो मैं कही दिस इज द रीजन, मैं कही यहाँ मसले होते हैं बट दे गेट सॉल्व वेरी क्विकली, और अगर होते भी हैं तो पीपल डोंट केयर अबाउट इट दैट मच कि उसको हाईलाइट करें. हाँ, अब हमारे मुल्क की साइड पर है तो वो उसको हाईलाइट कर जाते, ओ माय गॉड डोमेस्टिक वायलेंस ये है. जहाँ मैं मानता हूँ बहुत बुरी चीज है, बहुत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर हमें ब्लेम करना और ये प्रिटेंड करना कि ना नहीं एग्जिस्ट करता, दैट्स अ वेरी बैड थिंग. मुझे याद पड़ता है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की, शी वॉज प्रोटेस्टिंग फॉर वीगनिज्म, तो उसके कहती है कि डू यू ऑल नो दैट द मोमेंट दीज चिकन्स एंड टर्कीज आर बर्न, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर फूड एंड दे हैव नो अदर पर्पस. And I got up and I was like, you know, I don't see them having aspirations to become doctors and lawyers. Mm-hmm. So, like, I don't see, like, why shouldn't we eat them? They will be more. So, and I swear to God, I was gathering from this gathering. I was so young that gathering from this gathering.
लेकिन वही बात आती थी जहाँ पे इतने सारे परस्पेक्टिव्स आ गए, इतने सारे लोग इतनी अलग सोचों से, वो ठीक है. और इनजस्टिस भी यहाँ पे होती है, जिसने तुमने बोला यहाँ पे ज़रूर होती है इनजस्टिस, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं. आप यू नो यू हैव द राइट टू डू दैट एंड यू हैव द राइट टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड देन थिंग्स गेट करेक्टेड.
इवन द एलजीबीटी कम्युनिटी, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट. कोई मुझसे पूछता है कि हाँ भाई तुम तो उधर वो ये गंदे काम होते हैं, मैं कभी देखो आई गेट इट, इट्स रॉन्ग, हमारे मजहब में भी रॉन्ग है. बट यार टू बी ऑनेस्ट, मतलब नॉर्मल बंदे ने मेरा साथ छोड़ा है तो वहाँ एक एलजीबीटी वाले दोस्त भी मेरा एंड तक साथ दिया, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं आपकी. मुझमें हंस इस बात पर आता है यहाँ पे, उसमें हिस्ट्री में किसी लड़की से मेरा कहती है, उसने मुझे बड़ा अजीब सा ड्रेस अप किया हुआ. तो मैंने कहा आई प्रज्यूम यू आर वन ऑफ दी सेक्सुअलिटीज, का उस दिन एक इवेंट हो रहा था हमारी यूनिवर्सिटी में. कहती या, और उसने कोई नाम लिया पता नहीं कौन सा फाइल. सो कहती कि आई एम अ ह्यूमन बट आइडेंटिफाई एज अ ड्रैगन. मैंने कहा भाई कौन सी ड्रग करके आई हो तुम अभी.
I mean, there was an article, I don't know if it was a hoax or not, but I saw this, ke ek ladki samajh rahi thi ke main wo kutti hai. She was a dog. So she would dress, she would actually live her life like that. She would dress up as a dog, eat dog food. There's like pictures of her and everything.
Yeah, I think I have seen that. I think I've seen the one with Norway thi and she likes to be a
something
cat.
Something like that, yeah. Yeah, cat wari hain to both hain.
Yeah, yeah, yeah.
There's a lot of cat... I don't know if you're into anime, but there's a lot of, you know, cosplay.
Yeah, oh, cosplay
yeah,
and everything.
Yeah, girls dressing up as cats. So, lekin woh zyada shokiya karti hain.
Yaar, anime jo hai na, Pakistani ladkiyon ka, Pakistani ladkon ka solace, yeah. You can say that only, kyunki asal zindagi mein ladki milti nahi hai hume.
Yeah.
Yeah. Ye mera masla hai, main bilkul derail karta hoon. Yaar, kya baat
hai. It's good. This is good discussion. Lekin main jo point par kehne ki koshish kar raha tha, woh ye tha ki, like you said, you know, LGBT वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपके beliefs के खिलाफ है, लेकिन the beauty of living out here is usually people leave you alone. If you have the right to live, right, आप बाहर हिजाब पहन के जा सकते हैं, religion practice करते हैं, तो बाकियों को भी वो हक है.
Exactly. मैं कई बार सोचता हूँ कि you know I should start vlogging and everything. फिर मुझे वो complex, I have the confidence. मुझे मेरा जो लोग क्या कहेंगे ना, वो ऐसा reinforce हुआ है मेरे अंदर 22 साल से पाकिस्तान में, मतलब ना पाकिस्तानी community में रहा हूँ, ये बड़ा ना सोचता हूँ. तो मैं कहा चलो अच्छा यार शुरू करते हैं राइटिंग से, बिकॉज़ हिस्ट्री अच्छी लगती है. तो लेट्स मैं वो बंदा हूँ कि ना आई एम रियलिस्ट में कहता हूँ, अगर जहाँ मुसलमानों ने फतुहात भी की है ना, दे हैव कॉन्क्वर्ड प्लेसेस, वहाँ वो उतनी तरह बुरी तरह हारे भी हैं, उन्होंने उस तरह स्टूपिड मिस्टेक्स भी किए हैं. और ऐसे ऐसे लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं कि मतलब लिटरली पूरा रमज़ान मेरा ईमान डेंगल होता रहा है. जब मैं आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर के डिस्प्यूट्स पढ़ता रहा हूं.
That's a very interesting subject too, right?
Exactly. अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना है ना, तो there's a देखो सुनो जानो चैनल on YouTube. अगर ये listeners को भी पता चलना चाहिए वैसे. The thing about that show is जहाँ उन्होंने हमारी achievements को highlight किया है, वहाँ उन्होंने हमारी बुरी चीज़ों को भी highlight किया है. हमारे जो aristocrats थे, जो मतलब पीते पिलाते भी थे, orgies भी होती थी, ये चीज़ें पाकिस्तानी को बताना शुरू हो तो आग लग जाती है उनको. मैंने एक दफ़ा अभी रिसेंटली, हाँ मैंने उस पर किया, मुझे बुरा लगा जब हकिया सोफिया दे कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क. मैंने कहा दिस इज नॉट राइट. द थिंग इज इतने ऐसे, मैं आई हैव बीन टू टर्की, सेक्युलरिज्म गोज ओवर देयर, आई लव द सिस्टम ऑफ सेक्युलरिज्म. बिकॉज ना मुसलमान खामखा क्रिश्चियन को तंग कर रहे, हमारे मुल्क में तो क्रिश्चियन बेचारा सांस ले ले उसको कुछ मारना पीटना और खिलाफ शुरू हो जाते हैं, तो वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा. बल्कि मुझे सोचा, मुझे टर्की का लगा कि मैं नमाज पढ़ने गया, उसने कहा अजान होगी नमाज नहीं होगी. मैंने क्यों, कहते हैं हमारे इमाम की डाइवोर्स होगी जब तक वो डिप्रेशन में है, हम इमाम मस्जिद में नहीं है. मैंने कहा वाह क्या रीजन है. लेकिन कहा अगर यही बात पाकिस्तान में होती तो इमाम सब अभी पिट रहे होते. तो आके आके भाई तुम्हें क्या पता पहले मस्जिद थी है, फिर इसको ये अतातुर्क आया उसने म्यूजियम बना दिया. मैंने कहा भाई ये हगिया सोफिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 300 साल पहले का बनना शुरू हुआ था. अब वही बात है, मैं कहता हूँ भाई हिस्ट्री डिस्कस करनी है तो बड़ा तैयार हो क्या करूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. तो मैंने कहा इस तरह बना, तो मुझे बताओ कि कैसे मस्जिद थी पहले.
उनकी आर्गुमेंट ये होती है कि हमारी काफी मस्जिदें भी उन्होंने कन्वर्ट की हुई है.
एग्जैक्टली. आगे से रिप्लाई आया मुझे, बेटा एर्दोगान कहते हैं तैयब एर्दोगान जो कर रहे हैं ना उसको पता है, तुम चुप रहो. मैंने कहा मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं. इट्स अ कंप्लीटली पॉलिटिकल मूव. मैंने कहा आई हैव बीन टू हगिया सोफिया, उसके सामने सुल्तान अहमद मॉस्क है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मॉस्क इन टर्की. आपकी स्टूडेंट एफएससी की बुक में जिक्र है उसका, इंग्लिश की बुक में है, मैं चैप्टर चैप्टर. मैंने कहा वो तुम्हारा एक ग्रैंड चीज सामने है. मैंने कहा उसके आसपास छोटी सेवन हिल्स हैं इस्तांबुल में, जो मतलब ये मेरे काउंट किया था जिस उस व्यू में मैं था, सेवन हिल्स थी और सेवन के ऊपर ना वो एक सिमिलर आर्किटेक्चर टाइप की मस्जिद थी. मैंने उसके बाद मैंने कहा मजोलियम्स उसके इर्द गिर्द मजोलियम्स रहते हैं और छोटी मोटी मस्जिद उससे भी ज्यादा है. तो मैंने कहा जब इतनी ज्यादा मस्जिद, और मैंने कहा टर्की लोग नमाज भी नहीं पढ़ते ये तो तुम लोग इसे
जमात कैसे पूरी करोगे इतनी बड़ी मस्जिद में.
एग्जैक्टली सही बात है, वहां पे अगर जुम्मा होता है ना तो मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट, बिकॉज लिटरली टर्किश जो नई जनरेशन है ये, अगर आप मैं टर्की पांच शहरों में घूमा हूँ, आई हैव बीन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एज यू गो नॉर्थ टू साउथ रिलीजन का इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता रहता है. मतलब मैंने लिटरली लोगों को अल्कोहल पकड़ के मस्जिद में जाते हुए देखा है. मैंने जो अंतालिया रीजन था ना और मस्जिद से बाहर निकल के ड्रिंक करना, इट्स वेरी कॉमन. मतलब अल्कोहल तो चलता है वहाँ पे. फिर मैं गया कपडोचिया, वहाँ थोड़ा कम इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हुआ कि औरतें पर्दा नहीं थोड़ी सी. फिर मैं गया कोनिया, दैट्स द हार्ट ऑफ मौलाना रूमी, तो उधर तो बहुत ज्यादा इस चीज़ का रुझान था रिलीजन वगैरह का, सूफीज़म का. फिर आई वेंट टू अनकरा. अनकरा इज अ वेरी मॉडर्न, उधर मैंने इतना मजहब नहीं देखा, बिकॉज अनकरा इज अ मॉडर्न प्लेस यू कैन से. उधर इतनी हिस्टोरिक जगह भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर अतातुर्क सोन मजोलियम. जब मैं इस्तांबुल गया ना तो इस्तांबुल में आई सॉ रिलीजन लाइक अ प्रॉपर, मैं कहूँगा ना इस्लाम. मैंने बापर्दा खवातीन भी देखी, मैंने मदारिस भी देखे, मैंने लोग भी देखे टोपियां पहनी हुई, तस्मियां पहनी हुई लोगों ने. तो इस तरह उनका एक वो इंक्रीज होता है. लेकिन फिर भी आई डोंट सी देम एज द मोस्ट रिलीजियस पीपल इन द वर्ल्ड. के मैं कौन क्लिक है मैं क्या. अभी रिसेंटली एर्दोगान, मसला ये है कि जो लास्ट इलेक्शन था आई थिंक, उसमें एर्दोगान अपनी सीट से हार गया था. तो राइट नाउ ही नीड्स द सेंटिमेंटल वैल्यूज ऑफ पीपल. उसका बेस्ट क्या तरीका है मुसलमानों के लिए, एक कोई भी काम कर दो, मस्जिद बना दो, खोल दो, कंकर कर दो, इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर दो कि भाई हम मुसलमान कौम साथ है. और दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स हमारी जो मुसलमान उम्मत का एज अ होल है, कि हम बहुत सेंटिमेंटल हैं, कभी सब्र नहीं करते, बस अल्लाह के नाम आता रहता. तो अल्लाह तआला ने वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा मजे का वाकया है ना, कि वो अपने खैमे में बैठा हुआ है, उसने रिसेंटली जरूसलम पे हमला करना था या करने वाला था अभी. तो उसको किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम क्या इतनी बड़ी क्या चीज हो कि तुम जरूसलम फतह कर लोगे, तुमसे पहले इतने सारे फाते आए हैं वो कुछ कर नहीं आए, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू कैन डू. कहते हैं आई थिंक गॉड विल्स इट नाउ दैट जरूसलम शुड बी कंकर्ड बाय माय हैंड. सेकंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई हैव प्रिपेयर्ड इन नंबर्स, आई हैव प्रिपेयर्ड इन एवरीथिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड इन पेशेंस. मतलब कि था कहते हैं कि भाई मैं पूरा रेडीनेस होकर आ रहा हूं, मैं एमी उठ के नहीं आ गया, जलाल में उठ के नहीं आया, मैंने सबर किया है, मैंने पेशेंस किया है, आई हैव द आर्मी फॉर इट, आई हैव द इक्विपमेंट फॉर इट. And now that when God has decided, अब कहते हैं अब जो अगर मुझे फील होता है ना कि गॉड डिसाइडेड कि जरूसलम मेरे हाथों फतह हो, इट्स बिकॉज के मुझे मेरी रेडीनेस का पता है. आई नो आई एम रेडी टू फेस दिस, बट गोइंग ब्लेटेंटली इनटू वॉर के बिल्कुल ही मरने जा रहा हूं मैं विदाउट एनी सपोर्ट, दैट्स तो फूलिशनेस है. अल्लाह तआला ने इंसान को इतना भी मुसलमान को इतना सोचने की ताकत दी है, अंडर द पेन ऑफ डेथ आपको आप अपने आप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर सकते हो. जब इतनी छूट है तो हाउ कैन इट बी कि आप इतना गंदा सिस्टम लेकर चल रहे हो जिहाद का. एक जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट सिस्टम को रोमांटिसाइज किया हुआ है ना कि जंगे बहुत मजा आते हैं और जिहाद बड़ा एक मैं मानता हूँ, मैं एक बड़ा डर लगता है कि लोग समझते हैं कि बहुत एंटी मुस्लिम हूँ. मैं कहता हूँ वो बहुत चीज है, बट उनके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. आप मुसलमान को मत देखो, आप इस्लाम को देखो. मुसलमान तो बिगड़ चुका है
काफी अरसे से.
एग्जैक्टली, तो इस्लाम के अंदर भी उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर चीज के. तो उसके साथ देखा जाए तो जहाद की भी काफी हैं, और अगर आप पे लागू नहीं होता तो आप नहीं जा सकते. सपोज नंबर वन इज आप पे उधार ना हो, सेकंड नंबर टू इज आपकी फैमिली, ये ना हो कि आपकी फैमिली पे मतलब आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है. सपोज आपकी बीवी बच्चे आपके डिपेंडेंट है, आप जहाद पे निकल जाओ, इवन दैट इज नॉट अलाउड, उनका कौन संभालेगा.
आजकल मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा है ना उम्मत का, वो ये है कि इस्लाम की डेफिनेशन डिफाइन करना, इस्लाम को, इस्लाम के क्राइटेरिया को, क्योंकि कोई सारे एक सेम पेज पे है ही नहीं. हमारे इतने सारे सेक्ट शुरू हो गए हैं.
एग्जैक्टली,
आप हर मुल्क के देखें, हर मुल्क की शरीयत एक अलग किस्म की इम्प्लीमेंटेशन है, यू नो, हर मुल्क ने अपनी इंटरप्रिटेशन.
Exactly. मुझे सबसे मजे का जब लगता है मुझे न्यूफाउंडलैंड का एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गोरों से मिला हूं यहां पे, हु हैव बिकम मुस्लिम और
कन्वर्टेड
इन द और आर इन द ऑन द वे और आर थिंकिंग अबाउट इट. मुझे सबसे मजे का लगता है इन लोगों के बारे में कि जब एक गोरा मुसलमान होता है ना, तो इन लोगों के लिए देयर इज नो ग्रे एरिया, या तो हराम है या तो हलाल है, देयर इज नो ग्रे एरिया बिटवीन. हमारा मुसलमानों का ये है कि हमारे लिए वो ग्रे एरिया इतना बड़ा है कि हमारे लिए हराम हलाल अब वो कंसेप्ट बहुत छोटे रह गए हैं. पाकिस्तान में देख लो बहुत कम लोग तमीज करते हैं कि भाई हमारी कमाई हराम की है हलाल की है, यहाँ पे देख लो तो लोग बड़ा कम तमीज करते हैं कि ये जो हम खा रहे हैं ये मतलब प्रिपेयर मीट है, ये हराम हलाल है. हमने उस ग्रे एरिया को इतना एक्सपेंड कर लिया है ना कि अब हमें वो नॉर्मल लगना शुरू हो गया. लेकिन अगर मैंने गोरों को देखे वो उस ग्रे एरिया को एग्जिस्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं या तो हराम है या तो हलाल है. आई गेस इट्स बिकॉज़ वो अपनी जिंदगी में सारे बुरे काम कर चुके होते हैं, एक दफा इतने ज्यादा कहते हैं यार बस अब हमें अब बोर नहीं करना. हम क्योंकि हमें शुरू से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैं अपनी मेंटालिटी कहता हूं कि जी करके सीखना है.
एक मुझे याद है तुम बात कर रहे थे ना कि सेंटिमेंटल है काफ़ी हमारे लोग, तो ये मुझे एक बात याद आ रही थी. मेरे अबू भी बहुत बड़े हिस्ट्री के फैन हैं, यू नो माय डैड्स आल्सो वेरी एजुकेटेड अबाउट इस्लाम. तो इसी तरह
वो
हमारे घर एक हाफिज़ साहब आए हुए थे, यू नो मौलवी साहब. मौलवी साहब की मेरे ख्याल में तालीम थोड़ी कम थी शायद, या यू नो वो इससे बेसिक टिपिकल सेंटिमेंटल टाइप ऑफ मेंटालिटी इमोशनल. तो मेरे अबू ने थोड़ी हदीसें बताई, ये सही हदीसें हैं और ये मैंने भी पढ़ी हुई थी एक्चुअली. नाउ द थिंग इज यू डोंट हियर दिस हदीस ऑन टीवी एज मच. ये हदीसें थी थोड़ी थोड़ी सेक्सुअल नेचर की. यहाँ पे
एक मैं आपकी बात काटूंगा बीच में. द थिंग इज के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का हर एस्पेक्ट बताया, फ्रॉम गोइंग टू द बाथरूम टू बेड लाइफ. ये कोई बात नहीं है. एग्जैक्टली कोई बुरी बात नहीं है. ये बातें हाँ कॉन्फिडेंशियल है, जो कि आप एक बंदे को काफी एक सर्टेन एज की बात बताओगे या अकेले बताओगे, लेकिन ये बातें ऐसी नहीं है कि आपको ओ माय गॉड ये तो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता. ये
वही
बात है यार, मेरे बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स होता है, मेरे पेरेंट्स तो कर ही नहीं सकता, ये
हर बच्चा ऐसा ही सोचता है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हराम है.
Exactly.
You know, स्कूल में मेरे पीयर्स ने ना मिडिल स्कूल में, मैं मेरे ख्याल में छठी जमात में था या सातवीं जमात में शायद, मेरे ख्याल में छठी में था, तो बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. मैं काफी पीछे था इन चीजों में. आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड दीस थिंग्स. तो एक बच्चा कहता है, dude, your mom and dad had sex to have you. I was like, no, that's not allowed in my religion.
It's a very interesting, to be honest, this is a topic for a whole podcast. But Pakistanis think where babies come from. ये मुझे याद है, mango बात से पता है, Instagram पे पेज जो है.
तो स्टोरी मैं ये बता रहा था कि मेरे अबू हाफिज साहब के साथ बैठे हुए थे ना, तो वो कमरे में बैठे हुए हैं दोनों. अब वो दोनों हैं और मैं हूँ, तो मैं काफ़ी मचोर था, मेरे मैं तुम्हारी उम्र का था 22 सालों का. तो अबू उनको बता रहे हैं, यू नो जस्ट अबाउट सी हदीस. सो हाफिज साहब तो वो इतने ऑफेंड हो गए थे एकदम. वो कहते हैं, देखिए जी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप हमारी क्या कह रहे थे, अम्मा आयशा समथिंग लाइक दैट, उम्मत की माँ.
हाँ.
The mother of the believers, right? तो ये बहुत बेअदबी वाली बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए. तो अबू जस्ट लाइक यार ये हदीस है, मैं हदीस आपको बता रहा हूँ तो अपना पॉइंट करने के लिए. तो अबू ने हदीस खैर कंटिन्यू की, वो हाफिज साहब खड़े हो गए. खड़े होके मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. तो वो चले गए, वाकई चले गए, उठ के वो दो मिनट में भाग गए घर से. He got so offended by just a word for word hadith कि मुझे समझ नहीं आई कि यार ये किस किस्म की इन्होंने एजुकेशन की इस्लाम के बारे में, जो इन बातों को डिस्कस ही नहीं कर सकते, या उनको पता नहीं कि ये legit हदीस है कि नहीं.
मुझे याद है वो पाकिस्तान ना, एक सबसे मजे का 2002 2003 में ना रियलिटी शोज नहीं होते कि पीपल क्राउड, वो लोग क्राउड में जाके सवाल पूछते हैं लोगों से. पाकिस्तान में तो मेरे याद है अबू के ऑफिस में किसी से डिस्कशन हुई थी, तो अंकल ने बताया था मुझे, कहते हैं पीटी में शो बैन कर दिया था कि पाकिस्तानी बदतमीजी बहुत करते हैं, कि आप लाइव क्राउड में कहीं जाओगे तो गालियां और गंदी आवाजें और ऐसी चीजें. कहते हैं शो करने का मजा आता है, और यूजली द होस्ट इज फीमेल एज वेल, तो एक बहुत ही वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है. तो जिन दिनों ये शोज हो रहे थे ना, तो उसमें सवाल था कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी है. तो किसी ने कहा 206 205, एक ने कहा 401.
I know where this is going.
एक आंसर ने तो ना मुझे हिला के रख दिया. कहते हैं जी सर ये अल्लाह के मामले, आपको कुछ भी नहीं, हमें इंसानों को कुछ नहीं पता.
अच्छा.
ओके 206 है, साइंटिफिक है. कहते नहीं जी आपको क्या पता है, साइंटिफिक को क्या पता है, इंसान ने गलतियां होती रहती है, अल्लाह के निजाम है, आप छोड़ दें इस काम को.
Wow.
तो उसको होस्ट ने कहा, तभी कहते हैं मेरी जान तभी तुमने कपड़ों की दुकान पे काम करते हो, और चला गया वहां से.
Oh.
तो मैंने कहा ऐसा बर्न देके गया ना बंदे को, कहते तभी तुमने कपड़े की दुकान पे काम करते हो इस सोच की वजह से.
ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है यार इसमें, या तो ये कोई बहुत डिबेटेबल फैक्ट है. हर इंसान के पास उतनी बोन्स होती है जितनी दूसरे के पास होती है. ये तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज भी नहीं है.
Exactly.
या तो आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन होती है कि नहीं होती है.
मैंने सोचा कि जब मैं का तो एग्जाम होते हैं, तो मैं लिखना शुरू करता हूं.
Outside of the recording, Sather told me more about his passion for history. He wants to open a blog or a similar type of platform where he can try to share history for a young audience, especially a Desi audience, many of whom are learning history from biased sources and need more education from a neutral angle, once Sother launches this endeavor. We'll share the links to that on this episode's description and our website. We wrap up this conversation with a little bit of Sother's wild side.
जहाँ तक लड़की का सवाल आता है मुझे एक मेरा रिलेशनशिप भी रात नहीं एक वन साइडेड थिंग था मेरा उसमें इतना गंदा दिल टूटा मेरा कि कभी कुछ करने का दिल चाहता मतलब आप कहते हैं यार क्या है वही तीन महीने यू बिल्ड अप द करेज टू टॉक एंड यू स्टार्ट टॉकिंग एंड या तो रिजेक्ट हो गए नहीं हो गए तो बाद में चीज खत्म होनी है बट इट इज सपोज टू एंड आपका आपको पता है आपको बुरा लगेगा तो व्हाई गेट इनटू इट इन द फर्स्ट प्लेस सो चीज लेट्स बी ऑनेस्ट चीज गलत है ये भी
दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग इन इस्लाम
एग्जैक्टली दिस इज समथिंग दैट्स लाइक new to my life
yeah
because pakistan mein mere dost mere jaise ke itna zyada ke ek dost ko maine I love you keh diya hai na to dost kehte hai abhi tu kya kar raha hai maine kaha dekh bromance hai agar maine na kaha na to isko koi ladki bhi nahi kehne lagi to we need this bro na bros bros jo hai na we should be there for each other it's a very vague concept ke ji fire gaya hu main katar wapas gaya to pehli dafa to sab ke sath mera pehla sawal tha assalam alaikum kaisa hai still a virgin हाँ हूँ जा यार फायदा क्या कनाडा जाने का मैं कहा हाँ मैं तो गया ही इसलिए था कनाडा कि यही पुठे काम करने हैं मैंने वहां जाके डिग्री तो मैं भी
Exactly. लोग समझते हैं यहाँ पे आके ही आपको गोली मिल जाती है like right out of the airport and everybody's here for that purpose.
मेरी मैं तो अब इतना आके यहाँ ब्लंट हो चुका हूँ कि फैमिली गैदरिंग सी छोटी सी फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग तो उसमें एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा व्हाट्स योर ना हाँ कोई लड़की मिली कोई लड़की क्या सीन है मैं कहा हाँ आंटी बस दो से बात चल रही है मैंने कहा दो गोरी गर्लफ्रेंड्स हैं लेकिन मेन मेरी पाकिस्तानी है एक वहाँ पे आंटी के पूरा खानदान मतलब जो भी गैलरी में सबकी हक्का बक्का रह गया भाई और वो बड़े बैठे हुए सारे बैठे हुए फैमिलीज बैठी हुई वहाँ पे कि बोल क्या किया है तो मामा ने मुझे आंखें करके देखा कहती ये क्या जवाब हुआ मैंने कहा भाई ये सवाल क्या है मतलब आप लोगों को क्या लगता है जैसे सर सेम लगाया कि बेटा तुम्हारी बड़ी मूछें आ गई हाँ रजिया आंटी मूछे तो आपकी भी आ रही है तो मेरे को ये उसका एक पुट्ठा सवाल है इसका मेरा पुट्ठा जवाब ही है
वो समझते हैं कि लड़का शर्मा जाएगा यू नो हमारे कल्चर में वापस बात नहीं करते जवाब नहीं देते
एग्जैक्टली रिसेंटली मेरे एक दोस्त है वहां मॉल में खड़े हुए इनका तो नाम मैं लूंगा इनको नॉन नेम में रखना इनका नाम है राजा जी कहते हैं हम इनको पिंडी के हैं यार कंजूस बंदा बहुत है वो तो राजा जी जो है ना वो मॉल वो फूड डिलीवरी करते हैं साथ उन्होंने पहले देखा मैं लड़की के साथ खड़ा हूँ पीछे से गुजर गए देखा मुझे फिर ना स्पेशली सामने से गुजर के गए मेरे कि देख सकें कि लड़की कैसी है फिर मैंने मेरे एक दोस्त ने उनको मैंने कॉल किया मैंने कहा खबर पहुंच गई कहते हैं हाँ 20 मिनट पहले पहुंच गई थी उस बंदे ने 2 सेकंड ही लिए ब्यूटी को बताते हुए कि साथे लड़की के साथ कर रहा
है वाह बड़े नोजी किस्म के लोग हैं या तो कभी चक्कर लगा तो मुझे बताना एंड देन फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो सकती है या
श्योर 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 नो प्रॉब्लम
ऑलराइट ओके या ओके
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम इस ख्याल रखिएगा अपना अस्सलाम वालेकुम